हॉल के बाहर तक पहुंचते पहुंचते श्यामली की हथेलियां अब भी हल्की कांप रही थीं। कमरे की तीखी गर्म हवा अभी भी उसके साथ चल रही थी, जैसे विश्वनाथ का स्पर्श उसके कंधों पर अब भी कहीं चुपचाप बस गया हो। हॉल की तरफ जाने वाली सीढ़ियों पर दोनों के कदमों की आवाज एक साथ गूंज रही थी, पर सबसे ज्यादा भारी था वो सन्नाटा जो रात जैसे कमरे में छोड़ आई हो और सीढ़ियों तक पीछा करता आया हो। विश्वनाथ एक कदम आगे था, सीधा, ताकत में डूबा हुआ, ठंडा पर भीतर से उबलता हुआ, और श्यामली उसके पीछे धीरे चलती, पर हर कदम किसी अनजाने डर और खिंचाव के बीच अटका हुआ। जैसे ही दोनों ने हॉल में कदम रखा, सारी आवाजें ठहर गईं। नौकर रुक गए, कुर्सियां सेट करता लड़का भी थम गया। रत्ना देवी, जो आदेशों में व्यस्त थी, एकदम मुड़ी और उनकी आंखें चमक उठीं। हॉल रोशनी से भरा हुआ था। बीच में एक बड़ा सोफा, चारों तरफ रिश्तेदार, कोने में कैमरा सेट कर रहा फोटोग्राफर। पर जिस तरह सबकी गर्दनें मुड़ी, जैसे पूरा हॉल सिर्फ एक ही दृश्य को देखने के लिए बना हो, विश्वनाथ और श्यामली। रत्ना देवी के होठों पर भरपूर चौड़ी मुस्कान दौड़ गई। अरे वाह, वो लगभग चहकी उठी। क्या जोड़ी लग रहे हो तुम दोनों, मेरे बेटा बहू को तो किसी की नज़र ना लगे। उनकी आवाज़ में माँ की खुशी, गर्व और एक बेपनाह स्नेह भरा हुआ था। वो आगे बढ़ी और श्यामली को सिर से पांव तक देखती रह गईं, जैसे पहली बार देख रही हूँ। अरे श्यामली, ये साड़ी? रत्ना देवी ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी की। इतनी सुहाग सी लग रही है तुम पर, कितना प्यार, कितना नाजुक, बिल्कुल बहू जैसी। भगवान तुम दोनों को खुश रखे। वो दुआएं देने लगी, एक के बाद एक, बिना सांस लिए। इतनी खुशी में डूबी कि मानो दुनिया में बस यही दो लोग बचे हों। पर हॉल में हर दिल एक जैसा नहीं था। कुर्सी पर बैठी शकुंतला मुंह ऊपर किए अपनी हमेशा वाली नकली मुस्कान के साथ शांत बैठी रही। एक पल को भी नहीं हिली, क्योंकि उसके चेहरे पर एक शब्द लिखा था, फर्क नहीं पड़ता। उसकी आंखों में न कोई प्रशंसा थी, न गुस्सा, सिर्फ अहंकार। एक ठंडी भारी तिरस्कार वाली हवा, मानो वो खुद को दूसरों से ऊपर समझती हो और बाकियों की खुशी महज एक शोर लगती हो। उधर रम्या और विशाल पास आ गए। रम्या की आंखें चमक रही थीं। वाह मामी, वो बोली, आप दोनों तो मेड फॉर ईच अदर लग रहे हो। सच में मामी सही कह रही हैं, ये जोड़ी तो फिल्म जैसी लग रही है। विशाल भी हंस पड़ा। मामी जी, आप तो ऐसे लग रहे हो जैसे किसी मैगजीन फोटोशूट के लिए तैयार हुए हो। और मामी, आपने तो कमाल कर दिया, ये रंग, ये अंदाज, क्या बात है। उनके शब्द हल्के, खुश दिल और बिल्कुल सच्चे थे। पास खड़ी मधु अपने आप को रोक नहीं पाई, धीमे से बोली, हम तो कब से सोच रहे थे, बड़ी रोमांटिक जोड़ी है, देखिए ना, एकदम राजा रानी जैसे। उसने बाकी नौकरों को भी आंख मारी और सबकी हंसी दबी हुई निकल पड़ी। पर हॉल के एक कोने में, जहां बाकी सबका शोर छूट जाता था, वहां खड़ा था आर्यन। उसका चेहरा शांत, पर आंखों में जैसे ज्वालाएं जल रही हों। जब सबने श्यामली की तारीफ की, उसके होंठ जरा भी नहीं हिले। बस उसकी आंखें विश्वनाथ के हाथों की तरफ गईं, जो अभी भी हल्के से श्यामली के कंधे के पास थे। आर्यन का गला कस गया, दिल में एक खतरनाक काला एहसास उठने लगा। श्यामली सिर्फ मेरी है, वो पापा के साथ अच्छी नहीं लगती, कभी नहीं। उसकी उंगलियां हल्के से मुट्ठी में बदल गईं, रगों में जलन उठी, मानो किसी ने अंदर आग लगा दी हो। उसकी नज़र श्यामली पर टिकी रही। हर मुस्कुराहट, हर झुकता कदम, हर हिचकिचाहट उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी बढ़ा रही थी। अब फोटोग्राफर ने हाथ उठाया, सब तैयार, फैमिली फोटो ले लें। सब लोग इकट्ठा होने लगे, सिर सुधारना, साड़ी ठीक करना, कुर्सियां खिसकाना, सब चल रहा था। विश्वनाथ आगे बढ़ा और एक पल को श्यामली उसकी बगल में ठहर गई, इतना नज़दीक कि उसकी साड़ी की खुशबू विश्वनाथ की सांसों में घुलने लगी। फोटोग्राफर ने कैमरा उठाया, स्माइल प्लीज। रत्ना देवी ने एक प्यारी सी मुस्कान दी। रम्या, विशाल, नौकर सब खुश। शकुंतला एक नकली मुस्कान। आर्यन मुस्कुराया नहीं, बस घूरता रहा। और विश्वनाथ, कैमरामैन के 1, 2, 3 कहने में वो एक भी बार कैमरे की तरफ नहीं देख पाया, क्योंकि उसकी नज़र अटकी थी बस और बस श्यामली पर। कैमरा क्लिक, एक बार, दो बार, तीन बार। हर फोटो में विश्वनाथ के चेहरे पर वही तीव्रता, वही गहराई, वही फंसा हुआ खिंचाव था। फोटो खत्म हुई, सब लोग पीछे हटने लगे। तभी हल्की सी नाराजगी से भरी आवाज उठी, ये फोटो कब तक मिलेंगी? शकुंतला खुद को रोक नहीं पाई, भौंरी हल्की चढ़ी थी। हमें कई जगह भेजनी है,
लड़की नहीं है घर में, सबको दिखाना है। तुम्हारा काम ठीक से करोगे ना? फोटोग्राफर सफाई देता रहा। जी मैडम, शाम तक एडिट कर दूंगा। पर उस वक्त कुछ और ज्यादा भारी, कुछ और ज्यादा खतरनाक चल रहा था। विश्वनाथ, वो अपनी जगह पर नहीं हिला, न किसी से बात की, न रत्ना देवी से बुलाने पर आगे आया, न शकुंतला की बात पर प्रतिक्रिया दी। वो बस वहीं खड़ा था, पूरी तरह स्थिर। जिस दिशा में देख रहा था वो दिशा सिर्फ एक ही थी, शामली। जब तक शामली धीरे से साड़ी संभालते हुए मुंह झुकाए भीड़ से हटकर अंदर की तरफ जाने लगी, जैसे ही उसने मुड़कर हॉल की सीमा पार की, विश्वनाथ की आंखें उसी पल और गहरी हो गई, मानो उसकी हर सांस उसके कदमों के साथ बंधी हो। ऐसा लग रहा था कि वो तब तक वहीं खड़ा रहता जब तक वो पूरी तरह उसकी नजरों के सामने रहती। पर जैसे ही शामली ओझल होने लगी, विश्वनाथ ने एक धीमी, खतरनाक और लगभग अनसुनी फुसफुसाहट की। जब तक तुम यहां थी मैं कहीं और देख ही नहीं सकता था। आंखें अब भी उसी दिशा में टिकी थीं। लोगों के शोर, फोटो की बातें, शकुंतला की शिकायतें सब उसके लिए गायब थी। उसे सिर्फ एक चीज दिख रही थी, शामली का जाते हुए धड़कता हुआ साया, और उस पल विश्वनाथ के चेहरे पर एक सूखी, हल्की पर गहराई से डूबी आग उतर आई। उस आग का नाम वो खुद भी नहीं मानना चाहता था, लेकिन हॉल की हवा सब जान चुकी थी। दोनों के बीच कुछ शुरू हो चुका था, कुछ इतना गहरा, इतना खतरनाक, इतना अटूट कि अब किसी की भी नजर इसे रोक नहीं पाएगी।